होशिया सातवां बाब। जब मैं इसराइल को शिफा बख्शने को था, तो इफ्राइम की बदकिरदारी और सामरिया की शरारत जाहिर हुई, क्योंकि वो दगा करते हैं, अंदर चोर घुसाए हैं और बाहर डाकुओं का गौल लूट रहा है। वो ये नहीं सोचते कि मुझे उनकी सारी शरारत मालूम है। अब उनके अमाल ने, जो मुझ पर अयां हैं, उनको घेर लिया है। वो बादशाह को अपनी शरारत और उमरा को दरोगोई से खुश करते हैं। वो सब के सब बदकार हैं। वो उस तनूर की मानिंद हैं जिनको नानबाई गर्म करता है और आटा गूंदने के वक्त से खमीर उठने तक आग भड़काने से बाज रहता है। हमारे बादशाह के जश्न के रोज उमरा तो गर्मिये मैं से बीमार हुए और वो ठट्ठा बाजों के साथ बेतकल्लुफ हुआ। घात में बैठे उनके दिल तनूर की मानिंद हैं। उनका कहर रात भर सुलगता रहता है। वो सुबह के वक्त आग की मानिंद भड़कता है। वो सब के सब तनूर की मानिंद दहकते हैं और अपने काजियों को खा जाते हैं। उनके सब बादशाह मारे गए, उनमें कोई न रहा जो मुझसे दुआ करे। इफ्राइम दूसरे लोगों से मिलजुल गया। इफ्राइम एक चपाती है जो उल्टाई ना गई। अजनबी उसकी तवानाई को निगल गए और उसको खबर नहीं, और बाल सफेद होने लगे पर वो बेखबर है, और फखरे इसराइल उसके मुंह पर गवाही देता है। तो भी वो खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू नहीं लाए, और बावजूद इस सब के उसके तालिब नहीं हुए। इफ्राइम बेवकूफो बेदानिश फाख्ता है। वो मिस्र की दुहाई देते और असूर को जाते हैं। जब वो जाएंगे तो मैं उन पर अपना जलाल फैला दूंगा। उनको हवा के परिंदों की मानिंद नीचे उतारूंगा, और जैसा उनकी जमायत सुन चुकी है उनकी तादीब करूंगा। उन पर अफसोस, क्योंकि वो मुझसे आवारा हो गए। वो बर्बाद हूं, क्योंकि वो मुझसे बागी हुए, अगरचे मैं उनका फिदिया देना चाहता हूं। वो मेरे खिलाफ दरोगोई करते हैं, और वो हजूरे कलब के साथ मुझसे फरियाद नहीं करते, बल्कि अपने बिस्तरों पर पड़े चिल्लाते हैं। वो अनाज और मैं के लिए तो जमा हो जाते हैं, पर मुझसे बागी रहते हैं। अगरचे मैंने उनकी तरबियत की और उनको कभी बाजू किया, तो भी वो मेरे हक में बद अंदेशी करते हैं। वो रजू होते हैं पर हक ताला की तरफ से नहीं। वो दगा देने वाली कमान की मानिंद हैं। उनके उम्रा अपनी जुबान की गुस्ताखी के सबब से तैदेग होंगे। इससे मुल्के मिस्र में उनकी हंसी होगी।